ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी उपस्थित है। दीदी जी का हम करतल ध्वनि से बहुत 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 स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दीदी जी को अल्प आयु में ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। आपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। आपने बहुत समय तक ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के आपने व्यक्तिगत चिकित्सक के रूप में सेवाएं प्रदान की, आपको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्तमान समय आप महिला प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके सानिध्य में महिला प्रभाग के अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। आदरणीय दीदी जी अनेक विशेषताओं की धनी, सरल, सहज और मृदुभाषी हैं। आदरणीय दीदी जी के दिव्य उपस्थिति में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। योग की गहराई और सेवा की मुस्कान है आप, योग की गहराई और सेवा की मुस्कान है आप, सरलता, शांति और संस्कारों की पहचान है आप, निश्चय की शक्ति से जीवन को विजयी बनाना सिखाती है आप। इसीलिए आज निश्चय बुद्धि विजयंती का सुंदर संदेश लेकर आई हैं आप, सुंदर संदेश लेकर आए हैं आप। तो आज आदरणीय दीदी जी के जीवन के अनुभवों को हम यहाँ अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर आज की क्लास का विषय है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो आइए सुनते हैं आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी से।
ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चे ही यहाँ बैठे हैं, क्योंकि बिल्कुल निश्चय बुद्धि ही बैठे हैं। तो हम जैसे ही 7 दिन का कोर्स करते हैं और हमें ये निश्चय होता है कि शिव बाबा ही हमारे परम पिता हैं, और अभी शिव बाबा अवतरित हुए हैं पुनः सतयुगी सृष्टि की स्थापना के लिए, हमें वर्षा देने आए हैं, और ये वर्तमान समय संगम युग का समय है। उस घड़ी ही इस निश्चय से शुद्र जीवन हमारा बदलने लगता है। जो भी पुराना जीवन हमारा होता है, तुरंत हम जो इस ईश्वरीय जीवन की श्रीमत है, जो भी बाबा हमें निश्चय के अनुसार जो भी मर्यादाएं सिखाते हैं, उन सब पर हम चलना शुरू करते हैं, फिर भले ही वो हमारे लिए कठिन क्यों ना हो। तो ये डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज हमारा निश्चय है। अगर 100% निश्चय है तो हम तुरंत बलिहार होते हैं। तुरंत बलिहार माना जिसको बाबा कहता है झाटकू हो जाते हैं, और अपना तन मन धन पूरी तरह बाबा पर समर्पित कर देते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा ना कितने परसेंटेज हमारा निश्चय है, और या फिर अगर हमारा आधा अधूरा निश्चय है, कईयों को एकदम इतना जल्दी निश्चय नहीं होता है, धीरे धीरे निश्चय होता है, निश्चय होने में भी उनको 1 साल भी लग जाता है। तो फिर जब पूरा निश्चय नहीं होता है तो कोई बातें तो अच्छी लगती हैं और कोई बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, ज्ञान बहुत अच्छा है, योग भी अच्छा लगता है, लेकिन ये सृष्टि चक्र का ज्ञान समझ में नहीं आता। ये 5000 साल और ये हूबहू रिपीट होता है, इसमें कई उलझते हैं, फिर कई थोड़ा धारणाओं में भी उलझते हैं। ये ब्रह्मचर्य का नियम, शुद्ध भोजन का नियम, तो जब तक हमारा वो 100% निश्चय नहीं होता तब तक हम ब्राह्मण जीवन में पूरी तरह विजयी नहीं बनते। जितना निश्चय उतना माया पर हमारी विजय होती है और उतना ही बाबा के प्रति हम समर्पित होते हैं और उतना ही हमारी लगन और पुरुषार्थ तीव्र होता है। और फिर कईयों के साथ तो क्या होता है, निश्चय भी हुआ, ज्ञान में भी चलते हैं, धारणाओं में भी चलते हैं, लेकिन कई बार संग दोष में आ जाते हैं। संग दोष में आना माना जो भी हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, उनसे मिलते हैं तो वो हमें थोड़ा उल्टी सुलटी बातें सुना देते हैं ब्रह्मा कुमारी उसके बारे में, क्योंकि ज्ञान तो उनको है नहीं, अनुभव तो उनको है नहीं, तो वो तो बाहर बाहर से जो देखते हैं। अब बाहर से जो देखते हैं और सच्चाई, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, तो वो आपको कहेंगे आप कहाँ फंस गए जाकर के। हाँ, ये और ये कोई आपकी उम्र है जो आप ब्रह्मा कुमारी में चले गए, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन करना या भोजन का नियम पालन करना, ये सब जब वानप्रस्थी हो जाओगे तब करना, और भी कई तरह की बातें। आजकल तो मीडिया में भी कोई उल्टे सुलटी बातें डालते रहते हैं और वो हमने देख सुन ली तो क्या होता है, निश्चय से हिल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, जैसे दुनिया में भी तूफान आते हैं तो तूफान हिलाता है, तो जो भी पेड़ होते हैं, कई बार मजबूत पेड़ भी जो होते हैं वो तूफानों में हिल जाते हैं, झुक जाते हैं, कई तो उखड़ भी जाते हैं। तो ये भी निश्चय का पेपर हमारा बीच बीच में होता है। तो यहां पर भी अगर हम संशय में आ गए माना हिल गए, और अगर संशय के कारण हमने ज्ञान ही छोड़ दिया, जिसको बाबा नहीं कहता आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और फिर तो ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में भी देखा है, अपने ही परिवार में हमने देखा, हमारे पिताजी माताजी ज्ञान में आए, दोनों को बहुत लगन। उस समय 70s की बात है जब कहते थे कि 76 में विनाश हो जाएगा, तो बहुत एक ही सेंटर था, 10 किलोमीटर दूर सेंटर था, लेकिन फिर भी रोज मुरली सुनने जाना ही है, और कोई ऐसे साधन भी नहीं होते थे जैसे आज साधन है साइकिल पर। लेकिन जब हमारी माता जी अपने परिवार में गई तो वहां पर रिश्तेदारों ने उनको कुछ ऐसी ऐसी बातें सुना दी, तो जब उनकी बुद्धि में वो संशय आ गया तो वो जो इतनी लगन से रोज ज्ञान सुनती थी, वापस आते ही हमारे पिताजी तो घर में ही थे तो उनको तो उतनी ही लगन थी, लेकिन उनके लिए वो विघ्न पैदा करने लगे, उनको मुरली सुनने जाने नहीं देते थे, वो हम देखते थे। और अगर वो कोई मुरली ले आए घर में या वो कोई किताब भी ले आए तो उसको वो ऐसे छुपा देती थी कि वो कितना भी ढूंढ ले उनको मिलेगी नहीं। तो उन्होंने पूरी तरह से ज्ञान ही छोड़ दिया कई सालों तक, जब तक कि मैं समर्पित हुई और मैं फिर जब यहाँ मधुबन में रहने लगी, हॉस्पिटल की सेवा हम करते थे, हम उनको यहाँ लेकर के आए और जब उनको खुद अनुभव हुआ, क्योंकि वो फिर मधुबन तो आए नहीं, तो जब उनको वो अनुभव हुआ फिर से फिर वो ज्ञान में चलने लगे। तो क्या हुआ, रिश्तेदारों ने उनके मन में संशय पैदा कर दिया, तो ये संग दोष में। फिर कई बार परिस्थितियों के कारण संशय में आ जाते हैं। परिस्थितियां, अब बाबा तो कहता है ना कि जैसे पेपर तो आएंगे ही, क्योंकि हमारा बाबा टीचर भी है, तो जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान के निश्चय की परीक्षा भी समय प्रति समय हमारी होती है कि हम कितने मजबूत बने हैं उसमें। तो ऐसे ही एक भाई अफसर थे, बड़े अफसर थे, जिनको हमने ही कोर्स कराया और वो भी बहुत लगन से ज्ञान में चलने लगे और करीब एक दो साल हो गए उनको। हर साल क्या, हर टर्न में बाबा से मिलने के लिए आना, माना इतनी लगन उनको। और हुआ ये कि उनकी जो जॉब थी उसमें किसी ने उनके ऊपर रिश्वत का इल्जाम लगा दिया। मतलब वो उन्होंने कहा हमने कोई रिश्वत नहीं ली, लेकिन कई लोगों को ईर्ष्या होती है, तो उन्होंने कोई कोई ऐसी सेवाएं की अपने गांव के लिए भी, अच्छा बाबा की सेवा में धन खर्च किया, तो किसी ने उनके ऊपर इस बात को लेकर के ये आरोप लगा दिया और वो पकड़े भी गए। मतलब गवर्नमेंट ने उस बात को मान लिया और उनकी नौकरी कुछ समय के लिए जैसे बिठा देते हैं, ऐसी स्थिति हो गई। तो अभी बहुत पुराने तो वो ज्ञान में थे नहीं, फिर वो हिले इस बात में कि बाबा ने मेरी मदद क्यों नहीं की, है ना, मैं तो बाबा की सेवा के लिए ही कर रहा हूँ या जो भी है। तो वो संशय आया और साथ में उनके रिश्तेदारों ने कहा कि तुम इतनी भक्ति करते थे, अपने गुरु को मानते थे, अब वो देवता तुम्हारे नाराज हो गए हैं। और ऐसा क्योंकि जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। कई बार ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो ज्ञान में आने के बाद होती हैं, ज्ञान में आने के पहले कभी ऐसी परिस्थिति आई ही नहीं। तो इतना हिल जाते हैं ये बातों में, वो संशय में आ गए और फिर क्या हुआ, ज्ञान से ही चले गए। तो यहां पर क्या बाबा ने मदद नहीं की या क्या कहेंगे, यहां पर क्या हुआ, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, हमारी परिस्थिति से स्थिति नहीं है, लेकिन स्वस्थिति से हम परिस्थिति पर विजय होते हैं। जो ज्ञान योग बाबा ने हमें सिखाया, जो ज्ञान की लाइट और माइट हमें बाबा ने दी, क्योंकि वो ज्ञान में हमें निश्चय है ना, तो बाबा ने हमें कर्मों की समझ दी, ड्रामा का ज्ञान दिया है कि इस ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है, ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण है। अब देखने में तो कल्याण नहीं लगता है, देखने में तो बहुत बुरा हो गया, लेकिन क्योंकि कर्मों की गति के अनुसार, अब वो कौन से जन्म का हिसाब किताब अभी मेरे सामने आया, और हिसाब किताब मेरा है तो पार भी मुझे ही करना है, और बाबा मेरे साथ है, अगर वो निश्चय से जो मेरी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है, जो समर्थ स्थिति है, उस स्थिति से हम कोई भी परिस्थिति को बदल सकते हैं, हम नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं, वो पावर बाबा ने हमें दी है। दुनिया में तो परिस्थिति के अनुसार स्थिति होती है लोगों की, है ना, अगर दुख की परिस्थिति आ गई तो दुखी हो जाएंगे, खुशी की परिस्थिति आ गई तो खुश हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। दुनिया में जो अज्ञानी लोग होते हैं, कोई चाहे उनको रुला दे, कोई चाहे उनको हंसा दे, चाहे उनका मूड ऑफ कर दे, चाहे उनको टेंशन में ले आए, सारा दिन उनके मूड बदलते रहते हैं, क्योंकि जैसी जैसी समस्या आती है, जैसी जैसी बात होती है, वैसा वैसा वो सोचते हैं और वैसा वैसा ही वो महसूस करते हैं। तो उनके अंदर वो ताकत नहीं है कि अपनी स्वस्थिति से वो परिस्थिति को बदल सकें। लेकिन अब ऐसा नहीं हमारे सामने नहीं आती हैं बातें तो हमारे सामने भी आती हैं, समस्याएं तो हमारे सामने भी आती है, लेकिन हमारे ज्ञान की स्मृति से, बाबा ने जो हमें स्वयं की नॉलेज दी है, खुद बाबा हमारे साथ है, ड्रामा की नॉलेज दी है बाबा ने, तो उसके आधार पर हम उसे परिवर्तन कर लेते हैं। तो जैसे कहा ना कि ड्रामा में हर बात में कल्याण है, तो बाबा कहते हैं संगम युग में हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो और कोई कल्याण नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो परिस्थिति ने मुझे अनुभवी बनाया, उसने मुझे पाठ पढ़ाया, चाहे वो सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, चाहे मुझे धैर्य का पाठ पढ़ाया, चाहे वो मुझे समाने की शक्ति का अनुभवी बनाया, तो कोई ना कोई प्राप्ति हमें उसमें होती ही है। तो हम उसमें अपना कल्याण देख लें। कई बार भविष्य के पर्दे में होता है, सामने सामने नहीं समझ में आता, और नथिंग न्यू है हमारे लिए, है ना। जो भी हुआ कल्प पहले भी हुआ था, हम उसमें विजयी बने थे, अभी भी हम विजयी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं हमारे जो निश्चय के चारों पाए हैं वो मजबूत होने चाहिए, तब हम विजयी बनेंगे। अगर हम हिल गए तो हम पास नहीं हुए। जो निश्चय बुद्धि होगा वो अचल अडोल होगा, एक रस होगा, तब हम कहेंगे कि हम पास विद ऑनर हुए। और अगर हम कोई भी बात में हिलते हैं तो हमारा चारों ओर का निश्चय मजबूत नहीं है, कोई ना कोई निश्चय हमारा कमजोर है। जो हमारा बाबा में निश्चय है, चाहे स्वयं में निश्चय है, चाहे ड्रामा पर निश्चय है। और चौथा निश्चय बाबा कहता है, चौथा निश्चय परिवार में निश्चय। तो ये चारों निश्चय के पाए हमारे मजबूत होने चाहिए। कोई भी बिल्डिंग की फाउंडेशन अगर मजबूत है तो वो भूकंप में भी गिरती नहीं है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर कोई एक तरफ भी कमजोर होगा तो बिल्डिंग गिरने का डर होता है, या उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। तो हमारा भी स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय है हमारा, लेकिन स्वयं में निश्चय कितना है। स्वयं में निश्चय माना मैं जो हूं जैसा हूं। बाबा ने जो हमें ज्ञान युक्त हमारा सत्य परिचय दिया है वैसा ही जानना, मानना और चलना। तो मैं आत्मा हूं वो तो ठीक है, मैं आत्मा हूं वो तो हम इतना निश्चय है कि कोई हमें वैज्ञानिक भी आकर के उसे हटाने की कोशिश करे तो भी हम उसको निश्चय दिला देंगे कि वो आत्मा है, पर हम इस निश्चय से नहीं हटेंगे कि मैं आत्मा हूं या नहीं हटेंगे। बाबा कहते हैं जो साधारण माता है, हमारी जो माताएं हैं, वो भी इस बात को उतने निश्चय से समझा सकती हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं उसमें निश्चय। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं ही कोटों में कोई, कोई में भी कोई, शिव बाबा की वो कल्प पहले वाली आत्मा हूं, मैं ही देवी देवता बनने वाली आत्मा हूं, या हम ही विजयी रतन हैं, विघ्न विनाशक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व सेवाधारी हैं। तो जो भी स्वमान बाबा ने हमें दिए वो स्वमान की स्मृति और स्वरूप रहे, और जो उस निश्चय में होगा उसमें वो खुशी और नशा दिखाई देगा ना, क्योंकि स्वमान का एक नशा होता है जिसको बाबा नारायणी नशा कहता है। तो उसके चेहरे से वो महसूस होगा, वो साधारण अनुभव नहीं होंगे लेकिन अलौकिक होंगे। तो वो निश्चय हमारा जो स्वयं का निश्चय है, समय प्रमाण, जैसे कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन कोई बात आती है तो मुझे खुद में ही संशय आने लगता है कि पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, तो क्या हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, अपने ही पुरुषार्थ में अपने आप को विश्वास नहीं रहता है ना, वो निश्चय कि हम कर पाएंगे। बाबा कहता है एक तरफ कहते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और दूसरी तरफ दिल शिकस्त होते हो, हाँ ये मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरा पुराना स्वभाव, क्या करूं छूटता ही नहीं है। तो विश्व कल्याणकारी हो, विश्व सेवाधारी हो, विश्व परिवर्तक हो, तो क्या स्व का परिवर्तन नहीं कर सकते, स्व का कल्याण पहले नहीं कर सकते। तो अगर कमजोर महसूस करते हैं तो इसका मतलब जो स्वयं पर हमारा निश्चय है वो अभी हमारा हिलता है। तो हमें अपने स्वयं के निश्चय में मजबूत होना है, तो उस स्मृति स्वरूप में हम रहें जो बाबा ने हमें स्वयं की स्मृतियां दिलाई हैं। फिर बाबा में भी जैसे कहा, कई बार हम संशय में आ जाते हैं कि बाबा तो है, बाबा तो मेरा ही है, बाबा पर मेरा अधिकार, बाबा से मेरे सर्व संबंध हैं, लेकिन जब बाबा को याद करते हैं, जब सचमुच बाबा की हमें जरूरत है, तब तो मुझे बाबा का अनुभव ही नहीं होता है। तो कई बार बाबा में भी संशय में आ जाते हैं कि बाबा मेरा साथ क्यों नहीं देता, बाबा ने मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, क्यों मेरी जिंदगी में इतने विघ्न आते हैं, क्यों बाबा इनको दूर नहीं कर देता। जैसे भक्त भगवान को उलाना देते रहते हैं ना, भगवान से शिकायत करते रहते हैं, ऐसे हम भी बाबा को इस तरह की बातें करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बाबा में भी संशय ले आते रहते हैं, तो वो भी हिलता है कई बार। फिर ड्रामा में जो निश्चय है हमारा, बाबा कहता है ड्रामा माना फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। ड्रामा की अगर नॉलेज है और वो पावर भी है हमारी, तो कोई भी बात आएगी उसको हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कई बार अनहोनी हो जाती है हमारे जीवन में, ब्राह्मण बनने के बाद ही ऐसी अनहोनी हो जाती है, जैसे मिसाल दिया। ऐसे एक और मिसाल कि एक प्रसिद्ध एक्टर थे सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी जो माँ है वो ज्ञान में चलती हैं, और आप सबको मालूम है कि यूथ होते हुए भी उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी माँ उसके लिए ये कितना दुख की बात होती है कि उसका जवान बेटा चला जाए, और साधारण भी नहीं, माना इतना प्रसिद्ध है और वो इतना कमाने वाला है, और ऐसे बेटा शरीर छोड़ जाए तो क्या होगा उसका, वो तो उसके आंसू थमेंगे ही नहीं, समझ सकते हैं ना। लेकिन उनकी स्थिति कैसी थी, जो पुराने बाबा के बच्चे होंगे वो जानते होंगे इस बात को, क्योंकि वो पूरे मीडिया में आ गया, वो वायरल हो गया कि उनकी माँ रोई नहीं, उनको एक भी आंसू नहीं आया, और बहुत शांत रही वो, जो कुछ भी उनका किया उन्होंने, माँ है तो सब मृत्यु के बाद जो भी क्रियाएं होती हैं तो वो सब में शामिल रही, लेकिन वो जरा भी उनके चेहरे पर वो दुख और उदासी या जो हम कहेंगे कि कष्ट दिखाई दे वैसा नहीं था। और उसका कारण था ज्ञान, कि जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार पर उनकी स्थिति इतनी श्रेष्ठ थी। कोई साधारण जो होंगी माँ वो तो ऐसी स्थिति में नहीं रह सकती, क्योंकि औरों को भी हमने देखा है कि अचानक किसी की जिंदगी में जब ऐसा होता है तो वो तो डिप्रेशन में चले जाते हैं।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता विकराल विनाश खड़ा आगे। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है।
शिव माता के ज्ञान से फिर माया को हार भगाना है।
शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मानो साकार मुरली में बाबा हमेशा कहते हैं कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, और अगर आंसू आए तो फेल है या पास है? फेल है ना, तो पास हो गए ना वो। तो ज्ञान में निश्चय कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, और जो आत्मा गई वो आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। हमारा जब तक आपस में कर्म संबंध था तब तक हम साथ थे, और अब उसे दूसरी जगह पर उसका कर्म संबंध है तो वो आत्मा वहां जाकर अपना पार्ट बजाएगी। तो जितना वो निश्चय हमारा पक्का होता है उतना हमारी स्थिति अचल रहती है, फिर चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। तो ड्रामा के ज्ञान में निश्चय हमें ऐसे मजबूत बनाता है। और परिवार में भी निश्चय चाहिए, ये निश्चय भी हमारा हिलना नहीं चाहिए। कई कहते हैं बाबा तो बहुत अच्छा है, बाबा के साथ तो हमारे सर्व संबंध हैं, बाबा तो बहुत मीठा है प्यारा है, लेकिन ये जो परिवार है ना, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार, जब ब्राह्मण परिवार में आते हैं, संगठन में आते हैं, सेवा में आते हैं, क्योंकि सेवा करते हैं तो परिवार में संगठन में ही सेवा होती है, तो खिटखिट होती है। इससे तो दूर रहना अच्छा है, किनारे रहना अच्छा है। अपनी स्थिति खराब करो दूसरों के संबंध में आकर के, इससे तो अच्छा है दूर ही रहें। तो क्या कहेंगे बाबा, क्या कहता है बाबा? से योग लगाओ और परिवार, परिवार में आए या ना आए, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि आप बच्चों का जो यादगार है वो माला का यादगार है, चाहे वो 108 की माला है चाहे वो 16,000 की माला है। तो आपको राजधानी में आना है, बाबा राजधानी की स्थापना करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मा बाबा और अपनी मम्मा वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे और उनके साथ आप एक और होंगे, लेकिन पूरी राजधानी स्थापन कर हो रही है। बाबा धर्म और राज्य दोनों स्थापन करते हैं और जो धर्म पिता आते हैं वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन शिव बाबा राजधानी भी स्थापन करते हैं। और राजधानी में वैरायटी आत्माएं हैं, दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब अलग अलग संस्कार वाली हैं, एक ना मिले दूसरे से। तो ये कल्प वृक्ष के वैरायटी पत्ते हैं, तो बाबा ने हमें ये नॉलेज दी ना कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, तो हमें हर आत्मा को किस दृष्टि से देखना है, कैसे उसके संबंध संपर्क व्यवहार में आना है। कभी भी ये नहीं समझना है कि वो बदल जाए। किसको बदलना है, किसको बदलना है? स्वपरिवर्तन। स्वपरिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो जब भी हम परिवार में आते हैं, आपस में चाहे वो कैसी भी आत्मा है, अब दोनों तरह की आत्मा हमारे संपर्क में होती है, हमें स्नेह करने वाली भी होती है तो हमारे साथ हिसाब किताब चुकतू करने वाली भी होती है, क्योंकि हम आत्माएं ही 84 जन्म में एक दो के साथ आते रहे हैं, तो हमारे हिसाब किताब भी बने हैं, तो हिसाब किताब भी यहीं चुकतू करके जाना है क्योंकि वापस घर जाने का समय है। तो कौन चुकतू करने के निमित्त बनेगा? जो हमारे संबंध में है वही हमारे हिसाब किताब चुकतू कराने के निमित्त बनते हैं। तो फिर ऐसी आत्माएं कभी हमसे हमसे नाराज भी होती हैं, कभी हमारा अपमान भी कर देती हैं, जिसको हम कहते हैं गाली देने वाले भी हैं, तो हमारा गायन करने वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता है, प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन कोई आत्माएं ऐसी भी हैं हमारे आसपास जो आपको नीचे उतारने में देरी नहीं करते, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते या जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो बाबा क्या कहता है, कैसे परिवर्तन करो? उनको परिवर्तन नहीं करना है, मुझे क्या परिवर्तन करना है? मेरी वृत्ति को उन आत्माओं के प्रति परिवर्तन कर देना। एक सेकंड में ग्लानी को गायन में बदल दो। बदल सकते हैं? कोई गाली दे रहा है और उसको समझे ये तो मेरा गायन कर रहा है, यानी मेरी तारीफ कर रहा है। सब बदल सकते नहीं बदल सकते? अगर निश्चय है तो बदल सकते हैं। और बाबा कहते हैं अपकार को उपकार में बदल दो। वो हमारा अपकार कर रहा है लेकिन हम उसको उपकार में और सत्कार में परिवर्तन कर लें, तो जो भी हिसाब किताब भी हैं वो सहज चुकतू हो जाएंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे। और अभी शुभ भावना शुभ कामना से हमें ये सारे हिसाब किताब खत्म करने ही हैं। तो कभी भी परिवार में हमें खिटखिट नहीं लगेगी, हम अपने आप को कैसी भी आत्मा है उसके साथ संतुष्ट रहेंगे भी और उसको संतुष्ट करेंगे भी। इसीलिए बाबा कहता है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कैसे संपर्क में आना है? सदा मेरी भावना है कि मुझे सुख ही देना है, मुझे स्नेह ही देना है, मुझे सहयोग ही देना है। कौन दाता है? हमें बाबा के समान दाता बनकर चलना है ना। दूसरों से हमें अपेक्षाएं नहीं रखनी है। परिवार में संतुष्ट करने का महामंत्र यही है कि हमें देना है, हम जो दे सकते हैं उनको देते जाएं। वो मेरे लिए करे, मैं इतना करती हूं वो भी तो थोड़ा करे, इसको भी तो करना चाहिए, ये तो सोचते ही नहीं है। बाबा कहता है निश्चय की परीक्षा वहां होती है, आप सोचते हो ऐसा मेरा मान होना चाहिए ना, मेरा ऐसा नाम मान शान होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिलता है। जैसा नाम मान शान आप चाहते हैं आपको नहीं मिलता है, तो फिर व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो गए। इसका मतलब मेरा निश्चय कमजोर है। जहां भी मैंपन मेरा पूरा नहीं होता, वो मुझे रूहानी शान से नीचे ले आता है। क्योंकि मुझे मान किसने दिया? बाबा ने हमें इतना श्रेष्ठ सम्मान दिया है, स्वयं भगवान हमें मान देता है, स्वयं भगवान हमारा नाम लेता है। तो अगर कोई मनुष्य आत्मा मुझे नहीं दे रही तो हमें इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति से वो नीचे ले आती है, तो मेरा निश्चय हिल जाता है। तो इसका मतलब हम विजयी नहीं बने ना, अगर हम हलचल में आ गए, व्यर्थ संकल्पों में आ गए, या जो हम किसी से चाहना रखते हैं वो चाहना हमारी पूरी नहीं होती है। बहुत होता है ऐसे कि हम चाहते ये हैं पर होता कुछ और है। तो भी मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूं, वो रूहानी शान से मेरे को व्यर्थ संकल्प जरा भी न चले, तब हम कहेंगे हम विजयी हुए। जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, जब यज्ञ की स्थापना का समय था, ओम मंडली का समय था, कितने विघ्न आए बाबा के सामने, कितना लोगों ने गालियां दी, क्या क्या समाज ने विरोध नहीं किया। चलो बाहर वालों का तो छोड़ो, लेकिन अंदर भी यज्ञ में कई आत्माएं ज्ञान छोड़ करके भी गई आने के बाद भी। लेकिन बाबा सदा निश्चय के आधार पर और अटूट निश्चय, उस समय तो बिल्कुल ज्ञान नया था, आज तो हमारे सामने सब कुछ प्रत्यक्ष है, विश्व की स्थितियां भी हमें बताती हैं कि सचमुच अब विनाश होने वाला है। उस समय तो ऐसा कोई लगता ही नहीं था कि विनाश हो जाएगा, है ना। आज तो हम समझ सकते हैं कि हम अंतिम समय पर पहुंच चुके हैं, लेकिन तभी भी बाबा ने एक बल एक भरोसे के अटूट निश्चय के आधार पर सदा विजयी रहे, सदा निश्चिंत भी रहे। जो निश्चय बुद्धि होगा वो निश्चिंत होगा और बेफिक्र बादशाह होगा, कोई भी बात का फिक्र उसे नहीं होगा, क्योंकि वो क्यों क्या कैसे में जाएगा ही नहीं, क्यों क्या कैसे का प्रश्न ही नहीं है। सब प्रश्नों का उत्तर तो बाबा ने दे दिया, क्योंकि जो प्रश्न चित्त होगा वो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। तो ये प्रश्न उसके मन में उठेंगे ही नहीं, क्योंकि जब प्रश्न उठेगा तो उस प्रश्न का जवाब हाजिर है, पता है नॉलेज के आधार पर कि ये क्यों हो रहा है। आता है उत्तर? नहीं आता है, क्या कहेंगे। कोई भी परिस्थिति आई मानो, तो हमें पता है ना ये क्यों आ रहा है हमारे सामने, उत्तर मिलता है नहीं मिलता। तो जब उत्तर आ गया तो हलचल होने की बात ही नहीं है। अज्ञान में व्यक्ति को भय होता है, उसको असुरक्षा होती है, लेकिन जब हम ज्ञान के प्रकाश की लाइट हमारे पास है तो तुरंत फुल स्टॉप लग जाता है कि ऐसा इसलिए है और फिर अब हमें क्या करना है। समस्या को नहीं सोचते, लेकिन जो उसका समाधान है उसको हम सोचते हैं। तो बाबा के सामने हम सुनते हैं बेगरी पार्ट भी आया, चलो ओम मंडली तो पार किया सो किया, कोर्ट कचहरी तक भी बाबा को जाना पड़ा, वो भी सहज पार हो गया। बाद में बेगरी पार्ट भी कितना चला, उसमें भी बाबा हर बात में विजयी रहे। हमेशा ये समझा कि बाबा जिम्मेवार हैं, कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया कि पता नहीं भविष्य में खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज तो नहीं मिला चलो ठीक है, लेकिन आगे भी क्या होने वाला है। लेकिन बाबा ने हमेशा सोचा ये शिव बाबा का यज्ञ है, बाबा चला रहा है, बाबा जिम्मेवार है, मैं भी बाबा का हूँ और बच्चे भी बाबा के हैं, और फिर सहज उससे पार हो गए। कई बार बाबा जानबूझ के भी पेपर लेते थे, एक बार ऐसे ही हुआ, निर्मल शांता दादी का सुनाते हैं, ऐसे तो कई मिसाल हैं और आप सुनते भी रहते हैं समय प्रति समय। तो निर्मल शांता दादी को अस्थमा था, तो अस्थमा माना सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उनका बढ़ गया वो अस्थमा। तो बाबा ने वहां, तब उस समय संदेशी का पाठ बहुत चलता था और डॉक्टर वगैरह तो होते नहीं थे आबू में उस समय, तो कई बार बाबा संदेशी को ही बोलते थे कि बाबा को पूछ कर आओ क्या करना है। तो संदेशी बाबा से संदेश लेकर के आई, तो उसने कहा कि दादी को बर्फ के पानी से नहलाना है। अब समझ सकते हो अस्थमा वाले को बर्फ के पानी से नहलाना, किसको निश्चय होगा? हाँ, तुरंत घबरा जाएंगे कि बर्फ का पानी पड़ के क्या होगा, क्योंकि ठंडी ठंडी से अस्थमा बढ़ जाता है और बढ़ता है। लेकिन दादी को इतना निश्चय था कि जो बाबा ने कहा है वैसा ही करना है, तो ये भी परवाह नहीं की कि अगर मेरी मैं आत्मा शरीर छोड़कर चली गई तो बाबा ने कहा है तो करना ही है। और फिर सचमुच वो बर्फ के पानी की बाल्टी लाई गई उनको नहलाने के लिए, और जैसे ही वो पानी डालने लगे तुरंत संदेशी दोबारा चली गई और बाबा ने उसको स्टॉप करा दिया। तो बाबा ने कहा ये बच्चे के निश्चय की परीक्षा थी और बच्ची परीक्षा में पास हो गई, ये उनको जरा भी प्रश्न नहीं उठा कि बाबा ने ऐसा कहा इस बीमारी में। तो सुनते हैं ना कि बेगरी पार्ट में 15 दिन बाबा ने बाजरे का ढोडा और छाछ पे रखा बच्चों को, चाहे कोई कितनी भी बीमारी वाले थे उनको बाजरा पचेगा या नहीं पचेगा, क्योंकि बाजरे को भारी अनाज माना जाता है, तो बाजरा पच सकता है या नहीं पच सकता वो भी नहीं, सबको वही खाना है सबके लिए। और रिजल्ट क्या हुई ना, कईयों को शुरू शुरू में थोड़े संकल्प चले कि कैसे खाएंगे, लेकिन जब सब ने वही खाया तो जो उनकी बीमारी थी वो भी ठीक हो गई। तो क्योंकि शिव बाबा ने कहा ना, बाबा पर निश्चय, कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि अगर बाबा ने कहा है और उसमें आपको लगता है कि ये पता नहीं सही है या नहीं सही है, कहीं ये गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा क्या कर देगा, बाबा सही करने वाला बैठा है, क्योंकि बाबा तो सर्वशक्तिमान है ना, वो तो सर्व समर्थ है। तो इसीलिए बाबा कई बार कहता है कि कोई निमित्त बने हुए से आप श्रीमत लेते हो और मानो आपको वो राय ठीक नहीं लगती है, लेकिन निमित्त ने कहा है और आप मानते हो उस बात को, तो भी बाबा जिम्मेवार है, शिव बाबा जिम्मेवार है। तो ये है निश्चय कि जब बात हमें ऐसी लगे कि पता नहीं वाली, तो भी हमारा निश्चय संशय में नहीं बदले। बाबा पर निश्चय है तो बाबा बैठा है हमारे लिए, हम कहते हैं ना चिंता मत करो कौन बैठा है, बाबा बैठा है। तो इसीलिए वो बेफिक्र बादशाह होंगे, फिर चाहे कोई भी बात आ जाए ना, फिकर होता है ना कई बातों को लेकर, कईयों को अपने भविष्य को लेकर फिकर होता है, कईयों का पैसों को लेकर फिकर होता है, कईयों का बच्चों को लेकर फिकर होता है, या कोई समस्याएं आती हैं उसको लेकर के फिकर होता है, घर गृहस्थ में रहते हैं तो कोई ना कोई बातें ऐसी होती रहती हैं जो फिकर होता है। लेकिन अगर निश्चय है हमारा तो हम बोझ किसके ऊपर है, चिंता किसके ऊपर है, कौन हम कौन है, निमित्त है, ट्रस्टी है, जिम्मेवार कौन है, बाबा है। तो बाबा कहता है कि अपने चिंता फिकर मुझे दे दो, तो बाबा पर पूरा निश्चय है, हम बाबा के ऊपर छोड़ करके सब चलते हैं, अपने आप वो सब बातें हमारी सही होती जाती हैं, और कैसे हम उसको पार कर लेते हैं हमें भी पता नहीं चलता। हाँ, कईयों को आप में से ऐसा अनुभव होगा, है किसी को ऐसे अनुभव तो हाथ उठा सकते हैं, देखो कितने मेजोरिटी हाथ उठा रहे हैं, तो फिर निश्चय बुद्धि विजयंती है ना। तो बाबा कहते हैं चेक करो कि चारों प्रकार के मेरे निश्चय के पाए मजबूत हैं, कभी कोई निश्चय कभी कोई निश्चय हिलता तो नहीं है। ज्यादातर बाबा में हमारा 100% निश्चय होता है, वो कम हिलता है, लेकिन खुद में निश्चय हिल जाता है। या फिर ड्रामा ड्रामा बोलते रहते हैं और हिलते भी रहते हैं, ऐसा भी करते हैं, चलो ड्रामा में था ना ऐसा, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पता नहीं, तो क्या कहेंगे, ड्रामा में निश्चय है तो कहीं ड्रामा हिलता तो नहीं है हमारा। और परिवार में तो बहुत बहुत ज्यादा, अगर हमारा निश्चय हिलता है तो परिवार में, हम मधुबन में रहते हैं, इतने बड़े संगठन में इतने सालों से हम यहाँ रहते हैं, तो यहाँ भी सब जगह वैरायटी आत्माएं होती हैं, हम सब जानते हैं, है ना। तो यहाँ भी हम जहाँ भी रहे, चाहे कमरे में रहे, चाहे सेवा में भी, जो हमारा सेवा स्थान है, हमारे को भी बहुत प्यार देने वाली आत्माएं भी और बहुत परीक्षा लेने वाली आत्माएं भी, है ना, सभी तरह की आत्माएं हमारे हैं। एक बार गुलजार दादी जी का क्लास था मधुबन वालों के प्रति, तो गुलजार दादी ने कहा कि आप मधुबन में आ गए इसका मतलब ये मत समझो कि आपके हिसाब किताब पूरे हो गए, आपके कमरे में ही आपके हिसाब किताब लेने वाले हैं, जो आपके कमरे में रहते हैं वही आपके हिसाब किताब चुकतू कराएंगे। तो हमने ऐसा भी अनुभव किया, लेकिन ये हमने हमेशा लक्ष्य रखा कि हमारी भावना उनके प्रति कभी भी ना बदले, सदा हमारी शुभ भावना रहे उनके प्रति, सदा हमारी पॉजिटिव फीलिंग रहे। फिर चाहे उन्होंने हमें गाली ही क्यों ना दी होगी, और भी कई ऐसे ऐसे शब्द भी कहे होंगे, लेकिन एक तो हम हमेशा शांत रहे, कभी कुछ नहीं रिटर्न में रिप्लाई किया, और अपनी भावना को भी कभी नहीं बदलने दिया। तो ये हमें विजयी बनाता है। बाबा कहता है विजय का अंतर क्यों अनुभव होता है, जितना निश्चय है उतना विजय का अनुभव क्यों नहीं अनुभव होता है, क्योंकि निश्चय चारों प्रकार का एक साथ चाहिए, एक साथ चारों निश्चय है तब हम संपूर्ण विजयी बनते, तभी 108 की ही विजय माला बनती है, और जो 16,000 वाली माला है वो भी नेक्स्ट माला है, जो कोई ना कोई बात में थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं, फिर 9,00,000 की तो बात ही अलग है। तो अगर 108 की माला है तो वो स्नेह के धागे में पिरोई हुई माला, पहले तो यानी उन्होंने संस्कार मिलन की रास किया है, भले अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन जो मोती है मणका है वो मणके के साथ मिला हुआ है, दिखाते ना माला में, मोती से मोती लगा हुआ होता है ना, तो इसका मतलब कैसे भी संस्कार हैं लेकिन मिलाए हैं, है ना, तो संस्कार मिलन की वो रास की वो स्नेह के सूत्र में, उस एकता के सूत्र में पिरोए, तब वो माला बनी। तो परिवार में संस्कार मिलाना, जो बाबा ने हमें समझ दी है कि कैसे हमें अपने संस्कार को मिलाकर चलना है, और उसके लिए फिर हम सदा गुणग्राही दृष्टि रखें आत्माओं के प्रति, तो हम विजयी बनेंगे। तो यादगार है विजय का शास्त्रों में कि पांडव जो थे सिर्फ 5 थे और उनके सामने अक्षौणी सेना थी, लेकिन क्योंकि भगवान उनके साथ थे तो वो विजयी बने। तो भगवान का साथ विजयी बनाने के निमित्त बना, तो हमारे साथ भी बाबा हैं। तो बाबा के साथ को हम सदा यूज करें, कोई भी समस्या आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो जो भी निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं उनकी विशेष निशानी यही होगी, विजय तो है ही है लेकिन उसके अलावा भी बाबा कहता है कि वो आत्माएं सहज ही सर्वंश त्यागी होंगे, जो भी विकार माया के रूप हैं उन विकारों के अंश वंश को भी विजय प्राप्त करने में भी वो विजयी बन जाएंगे, उनको वो मुश्किल नहीं लगेगा। जैसे ये होता है कि हम कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, हो ही जाएगा, ऐसे संकल्प नहीं होंगे उनके। करना ही है, बनना ही है, दृढ़ता वाला संकल्प उनका होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे बाबा कहते हैं ना, प्रतिज्ञा माना क्या, कि प्राण जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए, इसको निश्चय कहते हैं कि चाहे जो हो मुझे ये करना ही है। अलबेले नहीं होंगे वो, जिनका निश्चय कम होगा वो अलबेले हो जाते हैं। चाहे वो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो हमारे रेगुलर दिनचर्या है, अमृत वेले उठना है, मुरली सुनना है, फिर सारे दिन हमें जो बाबा की स्मृति में रह करके कर्म योगी बनकर कर्म करना है, भोजन जैसे खाना है, सोना कैसे है, उस दिनचर्या में भी वो अलबेले नहीं होंगे, दृढ़ता से वो अपना पुरुषार्थ करने वाले होंगे। तो इस तरह से सर्वंश परिवर्तन करना, पूरी तरह से बलिहार बाबा पर जाना, ये निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं की निशानी होगी। और जो निश्चय बुद्धि विजयी होंगे वो सदा निमित्त निर्माण निर्मल होंगे, यानी वो उदार होंगे, उनका दिल बड़ा होगा। तो उदार माना सदा ही सबको आगे बढ़ाने वाले, सब में उमंग उत्साह भरने वाले, इस तरह की आत्माएं। बाबा कहते हैं उनकी भाषा भी मधुरता वाली भाषा होगी, यानी बाबा के समान, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को सदा आगे बढ़ाया और बच्चों के साथ सदा स्नेह और सम्मान का व्यवहार किया, इस तरह से वो आत्माएं भी सबके साथ इस तरह से व्यवहार में आने वाली होंगी। तो हम अपने निश्चय को चेक करें जो बाबा ने हमें बताया, खासकर परिस्थितियों के समय। वैसे नहीं हिलता है हमारा निश्चय, लेकिन जब जीवन में बातें ऊपर नीचे होती हैं तभी, चाहे जो भी निश्चय है, हमारे चारों प्रकार के निश्चय में कोई भी निश्चय अगर हिलता है, कमजोर है, तो अभी ही हम चेक करके उसको चेंज करें, तभी हम अंत में विजयी बन सकेंगे। जिसको बाबा कहता है बहुत काल का अभ्यास होगा तब हमें वो विजय अनुभव होगी। ओम शांति।
कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। अनहद नाद सुना देखी आती एक किरण अनदेखी आती राह दिखा कर जाती है भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है
शांति। एक हाथ की ताली से हम आदरणीय दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपने बताया निश्चय की डोर बस बाबा तेरी ओर, निश्चय का मजबूत पाया तो आ ना सकेगी माया, ड्रामा और परिवार पर निश्चय दिलाएगा विजय, ऐसी शुभ भावनाओं का पाठ आपने पढ़ाया। धन्यवाद दीदी, जो अनमोल रत्नों से आपने हमें सजाया, जो अनमोल रत्नों से आपने हमें सजाया, बहुत बहुत थैंक्स दीदी।